है, कैसा है जगदीश्वर, जगत का ईश्वर है। इसके आगे महाराज जी कहते हैं, पेखन सुन न सुनावनो, मन में दृढ़ी है साच। संत लोग उसका चिंतन करते हैं अघनाशन समझ करके, जगदीश्वर मान करके, और क्या करते हैं, देखना, उसको ही देखते हैं, उसको ही सुनते हैं, और उसके जो लक्षण हैं, उसके जो चिन्ह हैं, उसकी जो जैसे जिज्ञासुओं को समझ में आ जाए ऐसा सुनाते हैं, उपदेश देते हैं देखना। इसी प्रकार पेखन का अर्थ है देखना, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिधिधासितव्यो, ये श्रुति भी कहती है श्रोतव्यो, वो कैसा है ब्रह्म। मैत्रेयी को उपदेश करते हैं यज्ञवल्क जी महाराज, श्रोतव्यो मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी श्रोतव्यो, वह ब्रह्म कैसा है उसको श्रोतव्यो, यानी उसका श्रवण करो श्रोतव्यो, उसको पहले उसके बारे में श्रवण करना चाहिए मंतव्यो। यदि पहले हम श्रवण करेंगे फिर मंतव्य, वो परमात्मा ब्रह्म कैसा, श्रोतव्य मंतव्य, वह श्रवण करने के योग्य है। तो श्रवण का अर्थ श्रवण करना है, अथवा वेखन का अर्थ भी लगा सकते, श्रोतव्य मंतव्य निदिधासितव्य, वह परमात्मा रे मैत्रेयी और ब्रह्म कैसा है उसके बारे में श्रोतव्य, पहले उसको श्रवण करना चाहिए, फिर मंतव्य उसको मनन करना चाहिए, फिर निदिध्यासितव्य फिर उसका निदिध्यासन करना चाहिए। गुरु नानक महाराज जी भी ऐसा ही कथन करते हैं जपजी साहिब में, पहले श्रवण की बात करते हैं, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश, चार पौड़ी श्रवण की कहते हैं महाराज। श्रवण करने से जो हमारे अंदर अज्ञान है ना, दो प्रकार की हमारे अंदर जो भ्रांति है ना, अथवा दो प्रकार का अज्ञान है, उसकी निवृत्ति होती है। एक अज्ञान कैसा है, असत्वापादक है, और दूसरा अभानापादक है। ब्रह्म के बारे में बिल्कुल ही मालूम नहीं है उसको, असत्वा यानी उसको उसके हम सत्व को नहीं मानते। तो जब श्रवण करते हैं तो असत्वा, जो असत्व का पर्दा था ना, वह दूर हो जाता है श्रवण करने से, कि हाँ ब्रह्म है, परमात्मा है, प्रभु है, ये श्रवण करने से दूर होता है। जो हमारे अंदर प्रतिबंध है कि उस ब्रह्म के बारे में मालूम ही नहीं है, वो हमारा श्रवण करने से दूर होता था। जिन्होंने श्रवण किया है उनको श्रवण करने वालों के बारे में कहते हैं कि सुनने से क्या हुआ, जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए थे ना जीव, उन्होंने जब श्रवण किया तो उनको फल क्या हुआ, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश, उनको श्रवण करने से सिद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन ये किसी कोई ऐसा होता है, सभी के हिस्से में, सभी के भाग्य में ऐसा आता ही नहीं है। मनुष्या नाम सहस्रेषु कस्य जतति सिद्धये सिद्धामपि जततामपि सिद्धानाम कश्चन माम व्यक्ति तत्पतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्या नाम सहस्रेषु, सहस्र यानी हजारों मनुष्यों में से कश्चित जतति, कोई कोई जो है यतति, यत्न करता है सिद्धये, सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, यततामपि सिद्धानाम, वो जो सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं ना, कश्चन माम व्यक्ति, उसमें से कोई एक माम व्यक्ति मेरे को जानता है। कैसे जानता है, तत्वतः, तत्व रूप से कोई मेरे को जानता है, कोटन में नानक को, सभी नहीं, जग में उत्तम कार्य यह है विरले के ही के, बहुत यत्न करने वाले हैं, लेकिन सभी उस विषय तक पहुंचते नहीं हैं। पहले विधि से गुरुमुख से श्रवण किया हो, अब यहां पर जब श्रवण करने की बात आती है या मनन करने की बात आती है या निदिध्यासन करने की बात आती है, तो श्रवण और मनन और निदिध्यासन ये हमारे को श्रवण की मनन की निदिध्यासन की विधि चाहिए। विधि कहाँ से मिलती है? विधि के लिए क्या चाहिए? गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु के बिना घोर अंधार जो हमारे अंदर भयानक अंधेरा है ना, उसकी निवृत्ति नहीं होती। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध। गुरु के बिना हमारी श्रुति, हमारे अंदर की जो वृत्ति है ना, वो कैसी है? जो विषय आत्मिक हमारी बुद्धि है, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। ऐसा होता है कि जब श्रवण करना है कि उसके लिए आचार्यवान, यानी जो आचार्यवान जिसको कोई गुरु मिला है ना, ऐसा पुरुषो वेद कहते वह जान सकता। श्रुति भगवती ऐसा कहती है, अथवा श्रुति ऐसा भी कहती है तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। यह कहती है श्रुति तत्विज्ञानार्थम, जो तत्व ज्ञान का जिज्ञासु है, जिसको तत्व ज्ञान की जिज्ञासा पैदा हुई है, ज्ञातुम इच्छा यदि जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिसको जो होती है उसको कहते हैं जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा वाले को कहते हैं जिज्ञासु। तो कोई जो जिज्ञासु होता है ना, जिसके अंदर जिज्ञासा हुई है जानने की, उसको उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो वेद भगवान कहते हैं कि तत्व ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। उस तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जिज्ञासु को गुरु के पास, गुरु की सन्निधि में जाना चाहिए। तो जब गुरु की सन्निधि में जाना होता है तो फिर काचे गुरते मुक्त ना हुआ, ऐसे गुरु से तो मुक्ति मिलती नहीं है। कैसा गुरु होना चाहिए? कहते हैं भी एक तो जब गुरु के पास जाना है तो हाथ में हमारे कोई भेटा होनी चाहिए, समित पाणी, हाथ में कोई समधा अथवा कोई कुछ भी लेकर के जाना चाहिए। पर गुरु साथ में गुरु का एक विशेषण देते हैं कि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का अर्थ है जिसने पहले वेद के अर्थ को तत्व से श्रवण किया है, निश्चय किया है, ऐसा गुरु होना चाहिए। एक भगवती श्रुति और कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य अवरान निबोधत। क्या कहते हैं वेद भगवान? उत्तिष्ठत कहते तुम सावधान हो जाओ, उठो, उत्तिष्ठत जागृत जागो, यानी जो आप अज्ञान अथवा मोह अथवा अविद्या में ग्रसित हो उससे सावधान हो जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, प्राप्त करो जा करके वरान निबोधत, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका उद्बोधन, उनका उपदेश श्रवण करो। ये छुरस्य धारा, ये कैसी धारा है? छुरे की तरह है, दुरत्यया बहुत दुस्तर है। परंतु जब हम गुरु की शरण में जाते ना, उत्तिष्ठत होकर के, यानी सावधान होकर के, जागृत होकर के, तो फिर जब श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ हमारे को गुरु मिल जाते हैं तो फिर हमारे को जो महावाक्य है, वेद के महावाक्य अथवा वेद के महावाक्यों का तात्पर्य जो गुरु महाराज जी गुरबाणी में देते हैं ना, वेद के चार महावाक्य है ना, जैसे तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये चार वेद वाक्य है ना महावाक्य। ऐसे ही गुरु नानक देव जी महाराज अपनी अमृतमय वाणी जपजी साहिब में इन चार महावाक्यों का तात्पर्य चार बार कहते हैं, तू सदा सलामत निरंकार। ये चार महावाक्यों का तात्पर्य है, यहां महाराज जी ने जो कथन किया है, तू सदा सलामत तत्त्वमसि। उधर महाराज जी वेद भगवान की बात को सरल भाषा में जनसाधारण के लिए कृपा करते हैं, तू सदा सलामत। उधर तत्त्वम असी है, तत्त्वम असी, इधर है तू सदा सलामत। तू यानी त्वम, सदा सलामत, सदा सलामत ब्रह्म, तू सदा सलामत निरंकार। तत्त्वमसि का तात्पर्य बताते हैं कि तू कैसा है, तू ब्रह्म है, तू निरंकार स्वरूप है। ऐसा जब गुरु की शरण में जाकर के श्रवण करते हैं ना, तो फिर समझ में आता है, वैसे नहीं आता। श्रवण कहते हैं पेखन, सुनन सुनावनो। गुरु के शरण में जाकर के उस भगवान, उस परमात्मा, उस ब्रह्म के बारे में सुनना चाहिए, जिसके अभी अभी जिसके बारे में बताया था, अग्नाशन है, सर्वत्र रमण है, आद पूर्ण है, मध्य पूर्ण है, अंत पूर्ण है, ये सुनना चाहिए। पेखना, जब हम श्रवण करेंगे ना गुरु के द्वारा, तो फिर पेखना यानी उसके साक्षात की हमारे अंदर सामर्थ्य आती है, अथवा उसको साक्षात करने की जिज्ञासा पैदा होती है। पेखन सुनन सुनावनो। तो जब हम श्रवण कर लेते हैं, तो श्रवण करने के बाद पेखना, उसको देखना। देखना कैसे होता है, जब देखने की बात आती है तो एक तो हम संसार के जो नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनको अपनी आंखों से देखते हैं, तो यहां पर उस परमात्मा को दो प्रकार से देख सकते हैं। कल भी हमने आपको बतलाया था कि उसको सगुण साकार रूप में हम देखते हैं, जो हमारे सामने यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, उसको ऐसे चिंतन करके देखते हैं, जो बोलते हैं मृग मीन पंखेरी सो बिना हर जापत है नहीं हो, और उसको इन आंखों से हम बाहर से देख सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा था अर्जुन को कि मैं तुम्हारे को दिव्य ददामि ते चक्षु, कहा था ना भगवान कृष्ण ने, हे अर्जुन यदि मेरे को देखना चाहते हो तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। कैसा था वहां विषय, भगवान तो सामने खड़े हैं अर्जुन के, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूं। जो सामने भगवान खड़े हैं, अर्जुन उनके हर समय समीप में रहता है, उनको सखा भी मानता है, भाई भी मानता है, गुरु भी मानता है, और देखता भी हर रोज है, तब भी उसको कहते हैं कि हे अर्जुन यदि मेरे को देखना चाहते हो तो दिव्य ददामि ते चक्षु, तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूं। यानी जो बाहर वाला भगवान का सामने खड़ा आकार है ना, बॉडी है, वो कहते मैं ये नहीं हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर का दर्शन तो मैं इन आंखों से कर सकते हो, यदि मेरा स्वरूप देखना है तो दिव्य चक्षु, और दिए भगवान ने दिखाया अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन इन आंखों से नहीं। उस समय के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए भगवान ने। तो जब हमने उस ब्रह्म का दर्शन करना है ना, श्रवण तो हमने कर लिया गुरु से, पता चल गया कि वह आदि पूर्ण है मध्य पूर्ण है, उसका पाप करने पाप नाशक है वह, उसका नाम ही पाप नाशक है, दुख भंजन है उसका नाम। और क्या नाम है वो, कैसा है, तीने ताप निवारण हारा, ये उसका लक्षण है कि नहीं, गुरु ने बतलाया कि वह कैसा है, तीने ताप निवारण हारा, कौन से ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों ताप का वह नाशक है। आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक शरीर के और दूसरे मन के। हमारे जो शारीरिक ताप हैं उनकी निवृत्ति कुछ देर के लिए औषधि से हो सकती है, सदा के लिए नहीं, अत्यंतक निवृत्ति नहीं हो सकती, किंचित क्षण के अथवा चिंतक समय के लिए हो सकती है, तंत्र से हो सकती है, मंत्र से, यंत्र से हो सकती है, तीनों चीजों से हो सकती है थोड़ी देर के लिए, तंत्र मंत्र यंत्र से हो सकती है लेकिन अत्यंतक नहीं। ऐसे नहीं, उसको कह दिया तीने ताप निवारण हारा, यानी वो अत्यंतक निवृत्ति करता है तापों की। वो तापों की निवृत्ति ऐसे नहीं करता कि जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई दी तो आपके ताप की निवृत्ति हुई, ऐसे नहीं होती है, वह डॉक्टर नहीं है। तीने ताप कैसे निवृत्ति करता है, जब हम उसके साथ अभेद हो जाते हैं, उसका रूप हो जाते हैं। वैसे शारीरिक तौर पर आपके अत्यंत निवृत्ति ताप की नहीं होगी जब तक शरीर है, क्योंकि इस शरीर को कहते हैं महापुरुष लोग शरीरम व्याधि मंदिरम, यह शरीर जो है व्याधि का मंदिर है, रोगों का मंदिर है। जब तक यह शरीर है, प्रारब्ध है, तब तक इसमें रोग बने रहते हैं। तो आध्यात्मिक ताप जो शरीर के ताप, मन के ताप, मानो शरीर के ताप तो कुछ देर के लिए निवृत्त हो भी सकते हैं लेकिन मन के नहीं। मन का जो ताप है ना, सुख दुख हर्ष शोक भय ईर्ष्या द्वेष राग, ये सब मन के ताप हैं, इनकी निवृत्ति कहीं से नहीं हो सकती। ये तो कहते हैं कि ये जो हमारा मन है अथवा अंतःकरण है ना, इसकी निवृत्ति कैसे होती है, पवित्र होने से, और कहीं नहीं हो सकती। एक बात है कि इसकी निवृत्ति एक जगह से हो सकती है, गुरु द्वारे होए सोची पायसी, और कहीं से नहीं। ये गुरु के द्वारे, गुरु की शरण में जाने से हो सकती है, और कहीं एक द्वारे धोए अच्छा होए सी। कहते हैं महाराज जी की दवाई हम बता देते हैं आपको कि एत द्वारे, कौन से, गुरु द्वारे, गुरु के द्वारे, ये भी गुरुद्वारा है जिसको हमने बाहर लिखा है गुरुद्वारा, बाहर लिखा है ना बोर्ड पर गुरुद्वारा, ये पंडाल को भी गुरुद्वारा कहते हैं, वो द्वार है पंडाल में आने का, जब द्वार से अंदर आएंगे तो अंदर है गुरु, गुरुद्वारा लिखा है ना बाहर, तो उसका मतलब ये द्वार है और एक गुरु अंदर है। जब द्वार के पास आएंगे तो अंदर गुरु के दर्शन होते हैं। तो गुरु द्वारे होए सोझी पायसी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी, और कहीं से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर वाला शरीर जो है उसके तापों की निवृत्ति हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम श्रवण करते हैं ना गुरु के द्वारा उस ब्रह्म के बारे में कि वह तीनों तापों का निवृत्तक है, दुख हंता कैसा है, पापों का भी नाशक है और दुखों का भी नाशक है, ताप की भी निवृत्ति करता है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, और दुखों की भी निवृत्ति करता, दुख हंता दुखों का नाशक है, सुख रास देखो ये ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, वह ताप नाशक है, दुख नाशक है, सुखों की राशि है। जब आप यही बात वेद भगवान से पूछो, जब नारद जी जो सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं, तो सभी 64 प्रकार की विद्या पढ़ने से भी उनके तापों की जब निवृत्ति नहीं हुई, तो क्या करना पड़ा? अपने जो उनके भाई हैं संत सनातन संतन संत कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनकी शरण में गए और जाकर के प्रार्थना की है, भगवान मैंने श्रवण किया है, सुना है महापुरुषों से, शोकम तरती मातम्बित, ऐसा कहा है चांदोग्य, ऐसा कहा बृहदारण्यक में कि शोकम तरती मातम्बित, जो आत्मबित होते हैं ऐसे भगवान मैंने सुना है शोक मतरती, उनके शरण में जो जाता है उसको शोक से पार कर देते हैं, शोक की निवृत्ति कर देते हैं। तो तब उन्होंने बहुत लंबा नारद जी को जो उपदेश दिया है उसका विवेचन है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अंत में जाकर के वो कहते हैं जो वही भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमस्ती, जो वही भूमा तत् सुखम, हे नारद जो भूमा है वह सुख स्वरूप है। यो वही भूमा, और भूमा का अर्थ क्या है? सर्वत्र रमणं, जो सब जगह व्यापक है, जो रमण करता भूमा का अर्थ है, जो व्यापक है। जो वही भूमा तत् सुखम, जो व्यापक है, व्यापक कौन होता है? जो परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न कौन होता है? जो किसी का कार्य नहीं है। कार्य कौन नहीं होता? जो नित्य है। जो नित्य होता है वो किसी का कार्य नहीं होता, वो एक जैसा रहता है। जो कार्य होता है वह अल्प होता है, अनित्य होता है, विनाश वाला होता है। तो उसको कहते हैं शंक सनंदन जी महाराज के, हे नारद जो वही भूमा तत् सुखम, जो भूमा है वह सुख स्वरूप है। जब उसको आप जानोगे तब आप सुखी हो जाओगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, वह दुखों का नाशक है, सुखों की राशि है। जब हम सुख स्वरूप भूमा स्वरूप परमात्मा ब्रह्म को जान जाएंगे ना, क्योंकि हम दुखी क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि हमारा जो चिंतन है ना अल्प का चिंतन है। अल्पे सुखम नास्ति न अल्पे सुखमस्ति, ए नारद अल्प का अर्थ क्या है? परिच्छिन्न, कार्य, अनित्य। जो ये कार्य स्वरूप जो नाम आत्मक रूप संसार के पदार्थ हैं, ये अल्प हैं, न सुखमस्ति, इसमें आपको सुख का आभास प्रतीत होता है, सुख नहीं है। ये सुख की प्रति छाया है। ये जितना संसार का सुख है ना, ये उस ब्रह्म का एक अंश मात्र है, लेश मात्र है। ये उसके ही प्रकाश, उसके ही सुख से आपको सुख वाला प्रतीत हो रहा है, इसमें सुख नहीं है। नाल पे सुख मस्ती, क्योंकि इस संसार का जब तक चिंतन करते हैं, ये संसार कैसा है? दुख रूप है, भोग रूप है। हम इसका भोग करते हैं। किस चीज का भोग करते हैं हम? भोग का अर्थ क्या है? एक तो हम कड़ा प्रसाद को भोग लगाते हैं, लंगर को भी भोग लगाते हैं। भोग किसको कहते हैं? सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार इति भोगः। ये कहते हैं न्याय वाले महा जो शास्त्रकार हैं, वो कहते हैं भोग किसको बोलते हैं? सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार इति भोगः। सुख अथवा दुख का साक्षात्कार जो, उसको कहते हैं भोग। तो हम दो ही प्रकार का भोग करते हैं, जहां सुख का यानी अनुभव हमारे अंदर क्या होता है, यदि अनुकूल पदार्थ मिलता है तो सुख की अनुभूति होती है, यदि प्रतिकूल पदार्थ मिलता है तो दुख की अनुभूति होती है। दो प्रकार का हम भोग करते हैं, या सुख अथवा दुख। तो जब तक दुख की अनुभूति तब तक हो रही, जब तक प्रतिकूल पदार्थ है। संसार में दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं हमारे को, अनुकूल अथवा प्रतिकूल। तो जब तक अनुकूल प्रतिकूल है तब तक द्वैत है। तो वो कैसा है? दुख हंता सुख रास, उसके बारे में महाराज जी कहते हैं, पेखन सुनन सुनावनो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिधासितव्यो। अरे मैत्रेयी, वह परमात्मा श्रोतव्य है, उसके बारे में श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मने की गात कहीं ना जाए। गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, श्रवण करने वालों को क्या हुआ? सुने सरा गुणा के काहा, सुने शेख पीर पात साह, सुने अंधे पाप है राह, सुने हाथ हुवे असगाह। श्रवण करने से क्या हुआ? जो ये संसार रूपी सागर है ना, वह कैसा हो गया? हाथ हुवे, मानो हाथ के तलवे जितना हो गया जो संसार सागर था। श्रवण करने से इस संसार के रहस्य का, परपंच के रहस्य का पता चल गया। तो कहते हैं महाराज जी के संत लोग उस ब्रह्म का चिंतन ऐसे करते हैं, अथवा दूसरे को श्रवण कराते हैं सुनावनो, उसको श्रवण करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, यानी साक्षात करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। जब आप गुरु शरण में जाएंगे, गुरु से भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक, ऐसे नहीं परिप्रश्न से भया, ऐसे करके शंका से नहीं, जब आप शंका करेंगे परीक्षा लेने के लिए तब नहीं। विधि ऐसी है कि जब गुरु के पास जाना है ना श्रवण करने के लिए, गुरु शरण में जाना है, तो गुरु नानक महाराज जी क्या कहते हैं, ऐसी एक शर्त है महाराज जी की, जब आपने गुरु की शरण में जाना है ना, तो कैसे जाना है? हो सपना की देन का तो आओ हमारे पास, ऐसे नहीं, हो सपना की रेणु का, सबकी रेन यानी अपने अंदर निम्रता, अहम की समाप्ति करके। भक्त जी महाराज जी एक बात कहते हैं कि जब आपने जाना है तो साथ ना लीजिए कोई, जो तेरे अंदर है ना, जो तेरे साथी हैं उनको छोड़ दे। जब साधु की महात्मा की शरण में जाना है तो अपने अंदर का अहम जो है उसको खत्म करके जाओ, निम्रता से जाओ। तो जब इस प्रकार से हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु लोग पेखन सुनन सुनावनो, ऐसा जब हमारे को विधान विधि विधा प्रकार बताते हैं, यानी युक्ति से बताते हैं, प्रमाण से युक्ति से, यानी पहले जैसे मैंने कहा उपक्रम उपसंहार अभ्यास अर्थवाद उपपत्ति फल, इन षडलिंगों के द्वारा समझाते हैं ना जब, तो फिर क्या मन में दृढ़ी है साच। कहते हैं कि ऐसा गुरु से श्रवण करके मन में है दृढ़ी है, तो उस ब्रह्म को अपने मन में दृढ़ एक अर्थ है कि निदिध्यासितव्य, उसका निदिध्यासन करना चाहिए। निदिध्यासन यानी जो हमने श्रवण के द्वारा मनन के द्वारा श्रवण होता है कि किसी शास्त्र के अर्थ को समझ करके तात्पर्य का निश्चय करना, तो मनन का अर्थ है कि उस निश्चय किए हुए अर्थ को युक्ति से प्रमाण से पक्का करना। जब वह युक्ति से प्रमाण से हमने पक्का किया तो निधिध्यासन का अर्थ है कि उस अर्थ में अपनी वृत्ति तेल धारावत लगाए रखना। तो जब कहते हैं आप जाते हैं गुरु के पास अथवा महात्मा लोग पेखन सुनन सुनावनो, उसके बारे में श्रवण करके उसका दर्शन यानी उसका साक्षात करते हैं, दूसरे को बताते हैं, अथवा जिज्ञासु को महात्मा की गुरु की शरण में जा करके उसका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और जब मनन किया तो मनन उस श्रवण से क्या होता है, मन में दृढ़ है साच, उस जो सत्य स्वरूप ब्रह्म है उसको मन में दृढ़ है, मन में उसको दृढ़ करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर आगे क्या कहते हैं महाराज जी बतलाते हैं,
पूरे रहो सर्वतर में नानक हरे रंग राज।
फिर कहते हैं कि साधु महात्मा संत जाना उसका चिंतन कैसा करते हैं, पूर रहे हो सर्वत्र मैं, बात बार बार हमारे को, मैंने बोला था ना अभ्यास की बताते हैं, अभ्यास बताते हैं, आद पूर्ण मध्य पूर्ण से लेकर के उसी बात को ही बार बार बतलाते हैं। सर्वत्र रमणं कहा है वहां उस श्लोक में, इस श्लोक में क्या कहते हैं, पूर रहे हो सर्वत्र मैं, वह परमात्मा कैसा है, पूर रहे हो, परिपूर्ण हो रहा है, व्यापक हो रहा है, सर्वत्र में, सर्वत्र से कोई भी नहीं बचता, सर्वत्र सर्वनाम शब्द है सर्वत्र, तो सर्वत्र में सारा ब्रह्मांड आ जाता है, पूरी लोकाई सृष्टि आ जाती है, यानी वो जल में थल में मही पृथ्वी में आल आकाश में सब जगह है, और सब जगह परिपूर्ण है तो कैसे। हमने बोल दिया, आपने श्रवण कर लिया कि परिपूर्ण है, लेकिन देखा है कभी अनुभूति होती है कि वह जल में है या थल में है, कैसे पता चलता है। कल भी हमने कहा था कि यह पंक्ति केवल ज्ञान कांड की नहीं है, ज्ञानी के लिए नहीं है, जो भी शास्त्र होता है किसके लिए होता है, जो भी शास्त्र होता है वो शास्त्र ना ज्ञानी के लिए होता है ना अज्ञानी के लिए होता है, शास्त्र ज्ञानी के लिए भी नहीं होता अज्ञानी के लिए भी नहीं होता, शास्त्र किसके लिए बनाए गए हैं, जिज्ञासु के लिए, अज्ञानी को समझ में नहीं आता, ज्ञानी को जरूरत नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानवान क्या कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम ऐसा कहते हो, ये तो शब्द जाल है, ये तो बड़ा बड़ा जंगल है, इससे बच जाओ, ज्ञानी को तो जरूरत नहीं है, अज्ञानी के समझ में नहीं आता। तो शास्त्र किसके लिए, शास्त्र है जिज्ञासु के लिए, जो कुछ उस जानता है सामान्य रूप से जानता है, विशेष रूप से उसको अज्ञान है उसके लिए शास्त्र है, जिसको सामान्य ज्ञान भी नहीं है उसके लिए भी नहीं है, और जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए भी नहीं है। धोखा जहां यह ही होता है कि हम अपने आप को जब ज्ञानी मान लगते हैं तब हम इस चीज को श्रवण कर लेते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते, कहते ये तो हमने बहुत बार सुना है बाबा जी, और किसी को सुनाओ, यह पंक्ति तो हमने बहुत बार सुनी है। तो यहां पर पूर रहे हो सर्वत्र में ये तो बात कहते बहुत बार सुनी है, कैसे पता चलता है। तो कहीं थोड़ा सा दृष्टांत लेकर के जब आप देखेंगे ना, वोकत है जल में थल में पल में करके नहीं कर्म विचार है, वह कैसा है, कैसे जल में थल में है, वोकत है जल में थल में, जल और थल में वोकत है यानी रक्षा करता रक्षण करता पालन करता है, परिपूर्ण हो करके क्या करता है, पता कैसे चले। तो कहते हैं ना नानक चिंता मत करो चिंता तेसी हे, जल में जंत उपाय ना तिना फिरोजी दे। वो कहते चिंता किस बात की करते हो, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। नानक चिंता मत करो, कहते चिंता ना करो तो क्या करो, तत् कथनम तत् चिंतनम, क्या करो उसका चिंतन करो। कैसे चिंतन करो, जल में जंत उपाय है ना, अभी अभी आप सुन रहे थे ना, उड़े उड़ आवे से कोसा, कहां 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 वह प्रतिपालना करता है और किस किस की करता है, जल में थल में पल में, वहां सबकी प्रतिपालना करता है। कल के नहीं कर्म विचार है, कैसा है, द्वेष नहीं करता किसी से, यानी कि इसको हम रोजी दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे हैं, उसका चिंतन कैसे व्यापक है, वो ब्रह्मांड में कैसे रहता है। लेकिन पता चलता है जब हम गुरु की चरण में जाते हैं। एक आपको दृष्टांत देते हैं, आप गुरबाणी पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, जिज्ञासु की अवस्था कैसी होती है शुरुआत में, जब उसकी अवस्था कैसी होती है, जब वो उपासना में पहुंच जाता है तब कैसी होती है, जब उसको ज्ञान हो जाता है तब उसकी अवस्था कैसी होती है, कैसे पता चलता है। गुरु की शरण में जाने से भक्त नामदेव जी महाराज गुरु की शरण में गए हैं तो क्या हुआ, जब उनकी आरंभक अवस्था है, जब वो कर्म उन्होंने शुरू किया तो क्या कहते हैं, उनके दादाजी गए हैं बाहर एक दिन, तो जब कहा कि ऐ पुत्र मेरे पीछे आपने भगवान की सेवा करनी है, भोग लगाना है, तो उनको क्या मालूम कि भोग कैसे लगता है, केवल कर्म करने के लिए बोल दिया तो जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने सामने थोड़ी आना था, भोग तो भगवान को मान करके लगाना था ना श्रद्धा से, तो फिर जब नहीं आए तो क्या कहते हैं कि मेरे को मेरे साथ ऐसा करते हो, ये उनकी आरंभक अवस्था है ना, तो कहते हैं कि दूध जो है आपको पीना पड़ेगा, दूध पियो मेरे गोविंद राय, कहते हैं ना, नहीं तो घर को बाप रिसाए, ऐसे समझा जाता है कि कर्म कब करना, कैसा होता है कर्म करने वाला, उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको कर्म करना है। वो कहते हैं कि दूध पियो मेरे गोविंद राय, ना ही तो घर को बाप रसाए, सोन कटोरी अमृत भरी, ले नामे हर आगे धरी, ला के रखी है गुरु उसने भगवान के आगे। तो जब कर्म बता दिया था गुरु ने, तो उसको कर्म में निष्ठा से कर्म किया, केवल कर्म निष्ठा से कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान है उनको कि भगवान को भोग लगाया जाता है तो भगवान पीते होंगे, तो जब नहीं पिया तो क्या कहा कि जा तो दूध पियो, नहीं तो मेरे को गाली मिलेगी, मेरे को डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी। ये उनकी आरंभ का अवस्था है कर्म करने की, जब गुरु के पास जाते हैं। तो संत लोग बताते हैं कि ऐसा चिंतन होता है, पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ गया साच, जिज्ञासी को ऐसा करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पूर रहे हो सर्वत्र में, ऐसा उसको चिंतन करना चाहिए। तो जब ऐसा चिंतन किया तो फिर क्या हुआ, ऐसा चिंतन करते रहे ना, जब नामदेव जी महाराज जैसे गुरु के साथ उनके प्रश्न उत्तर की बात आती है, तू कौन रे, पूछते है ना उसको गुरु महाराज, ऐ नामदेव तुम कौन हो, तो क्या तू कौन रे, तो क्या उत्तर देते हैं, मैं जी नामा, ये है ना अवस्था है ना, ये आरंभक अवस्था, जब गुरु अपने से पूछेगा तुम कौन हो तो क्या कहेंगे, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, यही तो कहते ना हम लोग, हमारा परिचय यही होता है ना। तो नामदेव जी ने परिचय सही दिया है, तू कौन रे, जब पूछा गुरु ने तो कहते मैं जी नामा, मैं नामदेव हूं और कौन हूं, समझ गए। ऐसे चिंतन करने की विधि बताते हैं, वाणी ऐसा कहती है, ये वाक्य जो है इसको हरेक जिज्ञासु अपने अनुसार समझता है, जब नामदेव जी ने गुरु की युक्ति से चिंतन किया है ना, तब क्या हुआ? कर्म करते करते उनकी जो माल उनके दोष था ना, माल रूपी दोष दूर हो गया। जब माल दूर हो जाता है तब क्या बचता है? विक्षेप, यानी मन जो है साफ तो हो गया लेकिन चलायमान है, चंचल है, विक्षेप है, फिर भी उपासना में लग गए रामदेव जी। तो जब उपासना में लग गए तो अब कर्म करना छोड़ दिया। लोग कहते भी कैसा नामदेव है, कभी भोगने लगाता, पहले क्या करता था, अब कभी नहाता भी नहीं भगवान को, स्नान भी नहीं कराता। तो नामदेव जी क्या कहते हैं, आपने सुना ही है, आपने पढ़ा भी है। वो कहते भगवान को, क्योंकि पूर रहे हो सर्वत्र में, अब पता चल गया ना उनको, पोंगत है जल में थल में, तो कहते हैं कि मैं तेरे को भोग कैसे लगाऊं, तेरे को मैं स्नान कैसे कराऊं, तेरे को मैं अत्र अथवा फूले जो भी सुगंधी के पदार्थ कहां से तेरे को ला के चढ़ाऊं। पहले दूध बिता रहे हो बचरे, कहते तू पहले दूध पी लिया है, तेरे को भोग कहां से लगाऊं। वही नामदेव रोते थे भी दूध नहीं पियोगे तो मैं नहीं जाता, अब कहते तेरे को कहां से पिलाऊं, कहते सुगंधी कहां से, पहले बास नहीं है भवरे, तू पहले कहते भवरा बन के तू सुगंधी ले ली है, दूध तेने पहले पी लिया, ठाकुर को नैवेद्य करूं कहां से करूं, पहले दूध कहते तू पहले दूध पी लिया है, तेरे को कहां से पिलाऊं, और कहते तेरे को मैं स्नान कैसे कराऊं, 42 लाख जी जल में रहते, कहते तू 42 लाख जोनी के रूप में पहले तू जल में रह रहा है। ये उपासना है ना, गुरु ने बताई है विधि। तो जब नामदेव जी युक्ति से चिंतन करते, हमारे लिए बताते हैं उनकी बात नहीं है, जब उन्होंने चिंतन किया ना करते करते कहां पहुंच गए, ज्ञानकांड में आ गए। तो ज्ञानकांड में पूरा ही खंडन कर दिया, छोड़ा ही नहीं, सब चिंतन करते करते खंडन करते हैं ज्ञान कांड में, जो हम लोग धोखा खा जाते हैं, पांडे तुमरा रामचंद्र सो भी आपत देखा था, हैं? कहते हो भी देखा मैंने, रामचंद्र को भी देखा, क्या हुआ, रावण से ती सरबर होई घर की जो एक गवाही थी। कहते रावण के साथ क्या हुआ, झगड़ा हो गया, उनकी स्त्री रावण ले गया, मांडे तुमरा महादेव धौले बल्द चढ़िया आवत देखा था, मोदी के घर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, क्या है पूर रहे हो सर्वत्र में, उनको पता चल गया। तो फिर बाहर का नाम रूप का चिंतन करते करते नाम रूप की मिथ्या, उनके अंदर मिथ्यात्व निश्चय हो गया। तो कहते हैं हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत, ना मैं सोई सेवया ना देहोरा ना मसीत, वहां पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। भक्त कबीर जी महाराज कहते हैं, भक्त कबीर जी कि मैं उसका पुजारी हूं, मैं उसको मानता हूं, जाके माई ना बापू रे, मैं उसका पुजारी हूं, मैं उसका चिंतन करता हूं। भक्त हेत अवतार लियो है, खंडन कर रहे हैं अब, तुम जो कहते हो नानक नंदन, नानक नंदन का कोरे, पूर रहे हो सर्वत्र में, ऐसा चिंतन होता है, संत लोग ऐसा चिंतन करते हैं। तुम जो कहते हो नानक नंदन, जिसको अरे भाई तुम नंद बाबा का नंद कहते हो, नंद बाबा का सुपुत्र कहते हो, वो कौन है? तुम जो कहते हो नंद को नंदन, नंद को नंदन का कोरे, कहते हो नंद का नंदन कहां से आ गया भाई? जो कह है ठाकुर जोनी, सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी, कहते हैं वो मुख जल जाए और जीबा सड़ जाए, जल जाए जो कहती है ठाकुर ने अवतार लिया है, जन्म लिया है। कहां से कहते हैं? धरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे, जब अरबत नरबत धुंधुकारा सूरज पिरना गगल बिजन गणारा जब कुछ भी नहीं था तब एहो नंद कहां थोरे। तब कहते जब कुछ भी नहीं था तो जब ये बेचारा नंद बाबा कहां था। भगवान को भगवान को आप उसका पुत्र मानने लगे हो, जब कुछ भी नहीं था तो नंद बाबा बेचारा कहां था। कहते भाग भक्त हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा को बपुरा, यानी बेचारा। कहते ये तो भक्ति के अधीन भक्तहीन भक्ति के बसी भूत हो करके तो नंद बाबा की भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर के आए हैं। भक्त हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। ये तो कहते इस बेचारे बाबा नंद के अच्छे भाग्य हैं कि वो आ गए, यानी पूरे रहे हो सर्वत्र में। कबीर को ठाकुर ऐसो स्वामी जाको माई न पापूरे। ये तो कहते वह है जिसका कोई माई बाप नहीं है, पूर रहे हो सर्वत्र में। कहते हैं कि संत लोग उसका ऐसे चिंतन करते हैं कि सर्वत्र है, सब जगह है, पोंकत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। वह तो कहते संतों को रक्षण करता है जो गनीमन कार है। वो कहते गनीमन जो लोग है ना उनको गार है, नष्ट कर देता है। दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हारे, पूर रहे हो सर्वत्र में। कहते हैं कि वह सर्वत्र परिपूर्ण है, सबकी पालना उत्पत्ति रक्षा करता है, कहीं भी हो तो उनको प्रतिपालन करता है। 42 लाख जी जन्म होते उनकी वहां पर जाकर के सैन पत्थर में जंतु उपाय वहां जाकर के करता है। पाखंड कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह धन्ना पूर्णता को मत रे जी डराही। कहते उनको परिपूर्ण करता है, वहां है ना, उन्होंने देखा है कि वहां है। पाखंड कीट गुप्त होए रहता वहां पर जब दे सकता है, पत्थर के कीड़े को देता है पूर रहे हो। यदि वहां है तभी तो देता है ना पत्थर के कीड़े को, पत्थर में है, हमारे को तो बाहर भी नहीं दिखता, वहां कहां दिखेगा। तो पेखन सुन सुनावन मन में दृढ़ एहसास पूर रहे हो सर्वत्र में। वो परिपूर्ण है सर्वत्र सब जगह, लेकिन उसको परिपूर्ण देखना कैसे है, इन आंखों से नहीं देखा जाता परिपूर्ण, उसका अनुभव किया जाता है। इन आंखों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियभ्या पराहे अर्था अर्थ ये जो जब चिंतन करेंगे ना इंद्रियभ्या पराहे अर्था, वो तो कहते बुद्धि से भी परे है, इंद्रियों से भी परे है। आत्मा महान परा, वो इंद्रियों से भी परे है, बुद्धि से परे का अर्थ क्या सूक्ष्म है। परे का यानी बीच में कोई पर्दे की बात नहीं है, सूक्ष्म है। तो ऐसा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, महतो महियान, महत से भी महत है, अणियो अणियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ा है, कैसे चिंतन करेंगे उसका। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ा है, लेकिन पूर रहे हो, परिपूर्ण हो रहा है, यानी कोई भी जगह उसके बगैर नहीं है, सर्वत्र हो रहा है परिपूर्ण। हमारी अनुभूति नहीं हो रही, अनुभूति कैसे करेंगे उसकी। तो एक और वाक्य कहते हैं महाराज जी कि उसको देखने के लिए जैसे भगवान कहते हैं ना दिव्यम ददामिते चक्षु, ऐसे गुरु महाराज जी कहते हैं नानक से अखड़ियां बयान। वो आंखें भाई और है जिन्ना निसंदो मां पीरी, मां पीरी का मतलब माता पिता नहीं। नारक से अखड़ियां बयान जिनी दसंदो मां पीरी, जिन आंखों से मां का अर्थ है मेरा, प्री का अर्थ है प्यारा, जिन आंखों से मेरे प्यारे के दर्शन होते हैं ना, नारक से अखड़ियां बयान। कहते ये नहीं है, वैसे भक्त जी महाराज जी ने जिज्ञासु के लिए कहा है एक जगह, जैसे कौवे को कहते हैं ना कि इनको छोड़ दो बाकी सब आपने खा लिया, फिर देखने की आस, कहते हैं इन आंखों से मेरे को अपने प्यारे के देखने की इच्छा है। कागा क्रांग ढंडोलिया सगला खाया मास, वो तो कहते हे कौआ ए दोए आंखन ए दोए नैनो मत छोहो, ए दोए नैना मत छोहो, क्यों फिर देखने की आस, इन आंखों से मैंने अपने प्यारे के दर्शन करने हैं, क्योंकि दर्शन तो हम इन आंखों से बाहर करेंगे ना। जब बाहर वाली आंखों से दर्शन करेंगे तो उन आंखों से संकेत मिलता है। कल भी मैंने बताया था कि हम आंखों का महत्व नहीं समझ पाते। महाराज जी कहते हैं ए नेत्र हो बेर हो हर तुम मह ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। अब वहां क्या करोगे, वहां कैसे अर्थ लगाएंगे हम। ए नेत्र हो मेर हो हर तुम मह ज्योत धरी, कहते हैं अपने नेत्रों को सावधान करते उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य अवरान निबोधत, ऐसे कहते हैं। जब आप जाएंगे ना महात्माओं के पास तो सावधान कैसे करते हैं, ए नेत्र हो मेर हो, अपने नेत्रों को सावधान करके कहो कि तुम मह ज्योत धरी, जो तुम्हारे में देखने की सामर्थ्य है ना, जो ज्योति है आंखों में, ये किसने दी है, हरि ने दी है। हर तुम मह ज्योत धरी, हरि ने ज्योति दी है आपको, नजर दी है, तो किस लिए, हर बिन अवर न देखो कोई। जिसकी ज्योति है उसका दर्शन करो, तिस दै चानन सब मह चानन हुए, उसी के तस्या भाषा सर्वविदं विभाति, भगवती श्रुति भी कहती है तस्या भाषा, उसके प्रकाश से सर्व इदम सर्वम इदम, ए इदम यानी जो नाम रूपात्मक संसार है, विभाति उसकी चेतना से उसकी शक्ति से उसकी ज्योति से इन सब का दर्शन होता है। तो जब उसके द्वारा हम देखते हैं ना, उसकी शक्ति को पहचानते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो कहते हैं महाराज जी के नेत्रों से देखना तो है, देखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ ये साच कैसे पूर रहे हो सर्वत्र में, देखना होता है नेत्रों से और श्रवण करना होता है कानों से, देखन सुनना, देखना है और सुनना है, देखना यानी देखना, तो देखना कैसे है सुनना कैसे है। तो कहते हैं महाराज जी के देखन और सुनन का आपको अर्थ बताते हैं कैसे, ए श्रवणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह ज्योत धरी, तेरे अंदर ज्योति है हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया एहो वेस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है। कहते तुम कैसे देखते हो इन नेत्रों से, एहो वेस संसार तुम देख दे, देख तो आप भी रहे हो हम भी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं, वेस संसार तुम देख दे, इस संसार को देख करके चिंतन कैसा करते हो विषय का, एहो वेस संसार तुम देख दे, नेत्र इसलिए नहीं दिए थे कि इस संसार को देख करके विषय का चिंतन करो, एहो विष संसार तुम देख दे, पर कहा क्या है हर बिना वरना देखो कोई, इस संसार में पूर रहे हो सर्वत्र में, ऐसा दर्शन करो, तुम करते हो विषय का चिंतन, एहो विष संसार तुम देख दे, ऐसा मत देखो, कैसा देखो हर का रूप है, ये कहते हैं तो हरि का रूप है, तुम कैसे देखते हो विषय का चिंतन करते हो, तो जब विषय का चिंतन करते हो ना जब तक, तो विख्या में कहने ही तृप्त न पाई, जब तक विषय का चिंतन करोगे तो तृप्ति नहीं होती है, पेखन सुनन सुनावनो, कहते हैं कि सुनना कैसे है? ए श्रवणो मेर हो सत्य सुनने नो पठाए। आपको किस लिए बनाया, किस लिए भेजा है? सत्य सुनने नो, आपको सत्य सुनने के लिए भेजा है। तो सच्चे सुनने नो पठाए, शरीर लाए, शरीर के साथ आपको लगाया है क्या करने के लिए? सच्चे सुनने नो पठाए, शरीर लाए, इसलिए आपको भेजा है। तो क्या करो? आज्ञा करते हैं महाराज जी, प्रार्थना या बेनती नहीं करते। सुनो सत बाणी, कहते सत्य बाणी सुनो, कच्ची अथवा मिथ्या बाणी नहीं, सुनो सत बाणी। तुम सत्य बाणी का श्रवण करो, क्या होता है उसका फल? जित सुनी मन तन हरिया हुआ। जब आप उस सत्य बाणी का श्रवण करते हैं ना, जिसका हम कर रहे हैं, तो मन तन हरिया हुआ, हमारा मन और तन दोनों हरा हो जाता है, निरोग हो जाता है। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना सच समाणी, ये उसका फल है। पेखन सुनन सुनावनो, जब उसको आप ऐसे नेत्रों से ऐसा चिंतन करेंगे ना, तब पूर रहे हो सर्वत्र में, हर बिन अवर ना देखो कोई, फिर पता चलता है कि पूर रहे हो सर्वत्र में, वह परिपूर्ण है सब में। उसको देखने का ढंग तरीका चाहिए। फिर आपको जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, जो ये सारा ब्रह्म हो जाता है, किसकी दृष्टि में होता है? जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं उनकी दृष्टि में, दूसरे की दृष्टि में तो नाम रूप आत्मक ही दिखता है। जो ब्रह्म वेता होता है, ब्रह्म ब्रह्मैव भवति, वो हो जाता है, उसको दिखता है ये ब्रह्म मध्ये तिष्ठा ब्रह्मात्र है, एक शब्द लेवलाए, ऐसा होता है। ब्रह्म मध्ये तिस ब्रह्म, वो जो ब्रह्म का वेता है ना, ब्राह्मण कही है, वो ऐसा होता है। तो महाराज जी कहते हैं पूर रहे हो सर्वत्र में। महात्मा लोग ऐसा चिंतन करते हैं कि वह परमात्मा कैसा है, पूर रहे हो, वह सब जगह परिपूर्ण है। नानक हर रंग राज, उसको परिपूर्ण जान करके, समझ करके, ते नानक हर रंग राज, उस हरि के प्रेम में मस्त हो जाते हैं, प्रतीति प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पूर रहे हो सर्वत्र में जब देखते हैं ना, तो फिर जो भी उनको दिखाई पड़ता है ना, नेत्रों से जो बोलत है मृग मीन पंखे रू, फिर वो क्या कहते हैं? सब घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। क्या होता है? वो कहते हैं सब घट राम बोले। उनको जो भी आवाज सुनाई पड़ती है ना, केवल राम राम ही सुनाई पड़ता है। सब घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, ऐसा चिंतन करते हैं। वो भी जो चिंतन करने वाले के पास बैठेंगे तभी ऐसा होता है। कबीर जी महाराज कहते हैं संत मिले किस सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। जिनका ऐसा चिंतन है उनके पास प्रश्न करो, दूसरे के पास नहीं। दूसरा कैसा है? कहो कबीर छूछा खट बोले। जब कहते हैं आवाज किसमें से आती है, जो घड़ा खाली होता है ना, जब उसके ऊपर हाथ से चोट प्रहार करेंगे तो घड़ा बोलता है, उसमें से आवाज आती है। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरया होए सो कब हो ना डोले, उसमें से आवाज नहीं आती है, खाली जो है वो बोलता है। यदि ऐसे लोगों के पास बैठ जाओगे, आप न देह चुरू भर पानी, तेह निंदे जेह गंगा आनी, उनके पास कुछ नहीं होगा, उनके पास क्या है? साढ़ कुचर्चा आन न जाने, उनके पास बिना कुतर्क के कुछ नहीं है। साढ़ कुचर्चा आन न जाने, और कोई बात उनके पास नहीं है। यदि उनको समझाने के लिए ब्रह्मा भी आ जाए ना, तो कहते ब्रह्मा भूको कहे न माने है, वो तो ब्रह्मा को भी नहीं मानते। आपकी बात छोड़ो, ब्रह्मा हु को कहे न माने, उनकी हालत क्या है? आप गए और न हो खो, आप तो वो कहते जा गए ही हैं, आप तो समाप्त हो चुके हैं, यानी आप तो अपने स्वरूप से च्युत हो गए हैं, और न हो खो। दूसरा भी जो उनकी संगति में आ जाता है उसके भी समझ में नहीं आता। यानी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठ जब गुरु होते हैं ना, उनके पास जब जाते हैं तो उनके पास जाने से उस परमात्मा के बारे में जब श्रवण करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो जिज्ञासु की अवस्था बन जाती है। पूर रहे हो सर्वत्र में नानक हर रंगराज, वो कहते हो उस हरि के प्रेम में तदाकार हो जाते हैं, प्रेमा भक्ति में चले जाते हैं।
पौड़ी हर एक निरंजन गाइया, सब अंतर सोई।
अब जो दो श्लोकों में सिद्धांत बताया है ना, उसी को पौड़ी में बतलाते हैं। हर एक निरंजन गाई है, जो हरि है ना, हरि हरंति पापानि दुष्ट चित्तैरपि सदा, जो कैसा है? हरि हरंति पापानि, जो पापों को नष्ट करने वाला ऐसा है, उसको कहते हैं हर। जो हरि है वह कैसा है? एक, शुरू में कहा था ना एक ओंकार, उसी को ही विस्तार करते हैं हर एक। हरि कैसा है? एक है, द्वितीया उसके जैसा और कोई नहीं है, एक है वह। और फिर निरंजन, निरंजन है यानी पवित्र है, शुद्ध है, उसमें मिलावट नहीं है। जो तीन गुण है ना माया वाले, उससे अलग है। उसकी उपमा ही ऐसी है, पर फिर भी कहते हैं तीन गुना में व्याप्या, ऐसा प्रभु है। तीन व्यापे जगत को, कैसा है वो? तीन व्याप है जगत को, सारे संसार त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रयी। कहते ना भगवान के त्रय निस्त्रयी गुण्य, तू कहते हे अर्जुन ये जो संसार है ये तीन गुणों के अंदर है, तुम इन गुणों से ऊपर हो जाओ, अतीत हो जाओ। तो कहते हैं ना वो परमात्मा कैसा है, यदि उसको कोई जानना चाहता है ना, तो उसको ऐसा चिंतन करना चाहिए। हर एक निरंजन कैसा? तीन व्यापे जगत को, तुरिया पावे कोई। ये संसार में तीन गुणों की सब, कल भी हमने कहा था कि तीन गुणों का ही सारा पसारा है, माया का पसारा है। वो परमात्मा निरंजन कहते हैं कालुष को, कालिमा को कहते हैं। किसकी? माया की। उसको माया की कालिमा नहीं है, वो निरंजन है, उस कालिमा से रहित है, माया से रहित है, उसमें अविद्या या माया की गमता नहीं है, इससे युक्त नहीं है, यानी निर्लेप है, पवित्र है, निर्लेप है, शुद्ध है। निरंजन का अर्थ है कि वो अमाया और अविद्या से रहित है। हर एक निरंजन, वह एक है और निरंजन है। कहते हैं मायां तु प्रकृतिं विद्या मायनं तु महेश्वरम्। कल भी हमने बताया था कि वह एक है, एका माई है तो एक। तो कहते हर एक निरंजन, वह एक है और निरंजन है, उसमें प्रपंच नहीं है, उसको जब आप युक्ति से चिंतन करेंगे, निष्प्रपंचम प्रपंचते, युक्ति ऐसी है, निष्प्रपंच में प्रपंच का उपोधघात करते हैं शास्त्रकार, उपोधघात की विधा से बताते हैं। हर एक निरंजन गाई है, वो एक जो निरंजन परमात्मा है उसको गाई है, उसका गायन, उसका चिंतन, उसका मनन करो। हर एक निरंजन गाई है, कैसा है? सब अंतर सोई, सबके अंदर है, सबके अंदर बैठा हुआ है, अंदर ही नहीं है केवल बाहर भी है। उसका समझना पड़ेगा कि अंदर है कि बाहर है, बाहर कैसे है, अंदर कैसे है। हमने पहले भी आपको बताया कि सबके अंदर शासक रूप में है, अंतर्जामी रूप में है, घाट घाट के अंतर की जानत। घाट घाट का यानी हरेक हृदय की बात को जानता, अंतर की, बाहर की तो जान ही रहा है, अंतर बाहर जाने भेद, अंदर और बाहर सब जगह जानता है। पर पता किसको चलता है, किसकी दृष्टि में अंदर है, किसकी दृष्टि में बाहर है? जिन लोगों की दृष्टि बहिर्मुख है, कहते सो प्रभ दूर नाही, प्रभ तू है, ऐसा है। जहां पर आप चिंतन करने वाले ऐसा कहते हैं, सो प्रभ दूर नाही, प्रभ तू है, दृष्टि है ना अपनी अपनी, एक कहता सो प्रभ दूर नाही, प्रभ तू है, दूसरा कहता सो प्रभ दूर नाही, प्रभ तू है, दृष्टि अपनी है ना, कोई कहीं भी अर्थ लगा के चिंतन करता है। तो कहते हैं कि सब अंतर सोई, सबके अंदर वह विराजमान है।
करण कारण समरथ प्रभ, जो करे सो होई।
फिर वह कैसा है? करण कारण समरथ प्रभ, वो कैसा है? करण और कारण दोनों में समरथ है। वो कैसा है? प्रभु है, ब्रह्म है, प्रभु है, मालिक है, और कारण कारण, कारण भी है और कारण भी है। कैसे? व्यवहार में, पारमार्थिक रूप में नहीं, क्योंकि वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। कल भी बताया था, वास्तव में वो कुछ भी नहीं है, पर व्यवहार में कारण कारण है। कारण का अर्थ है साधन, कारण मतलब साधन, जिसके द्वारा कोई कार्य होता है, साधन, वह साधन भी आप है, यानी उपादान कारण भी आप है, निमित्त कारण भी आप है। आप भी निमित्त भी बनता है, उपादान भी है, सबका आधार भी है। उपादान कारण का अर्थ है आधार है, उसी में से सब कुछ निकलता है। निकलता क्या? दिखता है, उसी में है, उसी में दिखता है। जतो वा इमानी भूतानी जतो, ये यहां से निकलता है, जिसके अंदर रहता है, जिसके अंदर चलता है। करण कारण, वह करण यानी निमित्त कारण है, कारण का अर्थ उपादान कारण है, सबका आधार भी है, सबका निमित्त भी है, उसी के निमित्त से जो दिखाई पड़ते हैं। संसार की जो नामरूपात्मक सृष्टि है, ये दिखाई पड़ती है परमात्मा में। कैसे? एक दृष्टांत बताते हैं महापुरुष के, जैसे आप कहीं कोई फिल्म देखते हैं ना, कोई वीडियो देखते हैं। आजकल तो अलग बात है, पहले जब आप थिएटर में, सिनेमा हॉल में जाते थे, तो जब आप वहां देखते हैं कि पर्दा लगा होता है, एक कैसेट चलती है, एक पीछे से फॉक्स पड़ता है, तो जो फोटो होती है बताइए वो किसमें होती है? रील में। और दिखाई कहाँ पड़ती है? पर्दे पर। दिखाई पर्दे में पड़ती है, होती कहाँ है? रील में। कैसे तुम्हें? जब आपके पास रील भी है, पर्दा भी है, पर ना आपके पास प्रोजेक्ट है ना आपके पास फोक्स है, तो दिखेगी फोटो? कभी भी नहीं। आपके पास रील भी है, पर्दा भी है, पर दिखती नहीं है, क्योंकि निमित्त नहीं है। निमित्त नहीं है। निमित्त क्या है? एक तो कैस्ट डालने के लिए आपके पास टेप चाहिए, या प्रोजेक्ट जो पहले चलता था। यदि आपके पास टेप भी है, कैस्ट भी है, पर्दा भी है, तब भी नहीं दिखती। कारण क्या? आपके पास फोक्स नहीं है, प्रकाश नहीं है, बिजली नहीं है, नहीं दिखाई पड़ती। ये संसार जो है ना, संसार एक पर्दा है। संसार रूपी पर्दे के ऊपर ये संसार की जितनी फोटो है ना दिखाई पड़ रही है, पर कैसे? तिस दे जानन सब वह जानन होए। नमित कारण है कि नहीं? तस्या भाषा सदम बेबाती। जब तक उस परमात्मा का फोक्स नहीं ना पड़ता, ये माया रूपी एक रील है। माया की रील में सब संसार है, पर परमात्मा रूपी जब फोक्स पड़ता है ना, उसका चेतना सत्ता इसको जब मिलती है, तो फिर ये सारा कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो कारण कारण है भी उसी में है, क्योंकि माया भी उसी में है, उसी में दिखाई भी पड़ रहा है, पर दिखाई पड़ते हुए निर्लेप है, उसमें है नहीं है, केवल माया युक्त होने से दिखाई पड़ता। कारण कारण समर्थ प्रभु, वो कारण और कारण दोनों में समर्थ है, समर्थ है, सशक्त, उसके पास शक्ति है, और प्रभु है। जो करे सो होई, और जो वह करता है वह ही होता है। यानी उसकी शक्ति, उसकी चेतना के बगैर कुछ भी नहीं होता। कैसा कैसे करता है? जब आकर्थ कर्त हो कब हूं, ये उसका ऐसा स्वरूप है। जब उदकर्ख करा करतारा, कैसे करण कारण है? एको हम बहुश्याम प्रजाए, ऐसा कहती है भगवती श्रुति। एको हम बहुश्याम, जब उदकर्ख करा करतारा, जब उसके अंदर माया युक्त होने से इच्छना होती है, तो क्या होता है? जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धर्त तब देह अपारा। उसी समय सारा जे जितना ब्रह्मांड है ना दिखाई देने लगता है। तो जब उसका संकल्प इच्छन होता है ना उसको समेटने का, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं, जब आकर्ख कर्त हो कब हूं, तो क्या हुआ? तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। हुआ तो कुछ भी नहीं, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। ये उसी का है ना करण कारण समर्थ है। जो करे सो होई, जैसा वो इच्छण करता है ना, संकल्प करता है, वास्तव में इच्छण उच्छण कोई नहीं करता है। ये हम लोगों को समझाने के लिए है। उसमें इच्छण, उसमें चिंतन, उसमें संकल्प कुछ भी नहीं है, सबसे रहित है। लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए करण कारण समर्थ है। जो करे सो होई,
खिन मह थापे उथापदा, तिस बिन नहीं कोई।
और जब इस सृष्टि को करता है ना वो, यानी जब हम मान लेते हैं व्यवहार में भी सृष्टि उसने उत्पन्न की है, तो कितने समय लगता है उसको? ये नहीं कि बहुत युग उसको हो गए तो इसको समेटने में, पैदा करने में समय लगता है। खिन मह थाप उथापदा, एक क्षण मात्र में, एको हम बहुश्याम, ऐसा कहने से पूरा पसारा पसर जाता है। क्या किया उसने? गीता पसाओ, एको कवाओ। जब उसने ऐसा किया तो क्या हुआ? तिस्ते होए लख दरियाओ। एक ही ऐसा संकल्प हुआ, एको हम बहुश्याम, पूरा पसारा फैल गया। चिनमह थाप उथाप दा एक क्षण मात्र में ये सारा थाप यानी इसको पैदा करना और उत्थापन यानी इकट्ठा करना। पर आप कैसा है, अब आप इसको समझिए। कारण कारण समर्थ प्रभ, आप कहेंगे कि कारण है, जब वो कारण है तो वो कार्य भी होगा। जो कारण होता है किसी का कार्य भी हो सकता है। तो गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, समझ लीजिए, थापया ना जाए। वो कैसा है, थाप उत्थापन हारा है यानी स्थित करता है, स्थापना करता है संसार की। पर आप कैसा है, थापया ना जाए। आप किसी के द्वारा स्थित नहीं, इसको बनाने वाला नहीं, यानी वो कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। थापया ना जाए, कीता ना होए, किसी के द्वारा नहीं उसको बनाया गया। कैसा है, आपे आप निरंजन सोए, स्वयं प्रकाश है। उसकी बात करते हैं कि वो कर्ण कारण में समर्थ है, जो करता है वह होता है। और कितनी देर में करता है, खिन में थाप उथाप दा एक क्षण मात्र में इस संसार की रचना कर देता है, क्षण में खींच लेता है। और फिर कैसा है, तेस बिन नहीं कोई। ये भी बता दिया कि ये केवल आप लोगों की दृष्टि में है, तेस बिन नहीं कोई, उसके बगैर है कोई नहीं। यहां ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये केवल भ्रम मात्र है।
खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सावलोई।
कहते हैं कि खंड ब्रह्मांड पाताल दीप, उसका पसारा कैसा है। खंड और ब्रह्मांड, खंड का अर्थ है कि पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े, ब्रह्मांड का अर्थ है पूर्ण समग्र सृष्टि, तीनों लोक। खंड ब्रह्मांड और पाताल, पाताल से तीनों लोक, पाताल है और मृत्यु लोग है और ऊपर वाले लोग हैं, सारा ब्रह्मांड। खंड ब्रह्मांड पाताल, फिर दीप जो हम मानते हैं ना, सप्त सप्त दीप मानते हैं, सप्तदीप सप्त सागरा नवखंड ऐसा भी कहते हैं। सब जगह पूर रहे हो है, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई, संपूर्ण समग्र सृष्टि, लोई का अर्थ है लोकाई सृष्टि, उस सब में कहते हैं पाताल दीप रव्या। रव्या का अर्थ क्या है, रमण करता है, व्यापक है, रव्या सब लोई।
जैसे आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जान सोई।
पर ये जो सिद्धांत, जो तत्व इस लोक में पौड़ी में महाराज जी ने कथन किया ना, अब समाप्ति करते हैं। तो समाप्ति पर कहते हैं कि ऐसी जो विधि है ना, जो ऐसा सिद्धांत, जो तत्व है ना, ये पता किसको चलता है, जिस आप बुझाए सो बुझसी। आम आदमी के समझ में नहीं आता, जिस आप बुझाए, जब उसकी कृपा होती है ना, कृपा करे जिस पार ब्रह्म हो वह साधु संग। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कहते हैं भीष्म जी महाराज, कहते हैं हनुमान जी को कि आपका दर्शन हमारे को हुआ है भगवान की कृपा से, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कहते हैं भीष्म जी महाराज के आपका हनुमंत जी हमारे को दर्शन हो गया, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संतों का मिलाप नहीं होता। जब हरि की कृपा से संत मिल जाते हैं तो क्या होता है, सात संगति संसदी कर अंता। जब महात्माओं की संगति मिलती है तो संसदी जो होती, संसदी का अर्थ है संसरण करना यानी आना आवागमन। जब हरि की कृपा होती है ना, बिनु सत्संग की विवेक ना होई नहीं होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा के बगैर सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जब तक सत्संग नहीं मिलता तो बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो जब तक विवेक नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, खट संपत्ति नहीं मिलती, मोक्षा नहीं आती। तो कहते हैं गुरु महाराज के जिस आप बुझाए सो बुझसी। बुझाना यानी समझाना, जना देना, बता देना। जिस आप बुझाए, आप यानी जो प्रभु है, जब उसकी कृपा होती है, उसकी कृपा से गुरु की सन्निधि मिलती है, गुरु मिलते हैं। तो जब गुरु मिलते हैं फिर उसकी जो तात्पर्य है, तत्व है, उसका पता चलता है। जिस आप बुझाए सो बुझसी, जिसको परमात्मा आप समझाता है ना गुरु के द्वारा, वह समझ जाता है। जब समझ जाता है तो फिर क्या होता है, निर्मल जन सोई, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। ऐसा कहते तुलसीदास जी महाराज के, मोही कपट चल चित्र न भावा। मेरे को यह नहीं भाता, मेरे यह जहां मेरे पास जो आएगा ना चल चित्र से, धोखे से, जिसके अंदर कलुष है, पाप है, वो मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन जन, जिस जन का, जिस जिज्ञासु का मन कर्म और उपासना से पवित्र हो गया है, सोई मोई पावा, वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि जिसका मन गुरु की शरण में आकर के श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा पवित्र हुआ है, जिसके अंदर जिज्ञासा हुई है। क्योंकि जब कर्म का आरंभ होता है ना, तो जैमिनी जी महाराज कहते हैं पूर्व मीमांसा को जब शुरू करते हैं ना, तो जैमिनी जी महाराज कहते अथातो धर्म जिज्ञासा, जहां से शुरू करते हैं जैमिनी जी महाराज पूर्व मीमांसा, यहां से करते अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म में पूरा कर्मकांड आ जाता है। तो जब व्यास जी महाराज बोले तो क्या कहते हैं, जब ब्रह्म सूत्र शुरू करते हैं तो व्यास जी महाराज क्या कहते, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म से कर्म से शुरू किया तो ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को प्राप्त करने का इच्छुक बन गया गुरु के चरण में आने से। कर्म कैसे करना था, कैसे किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं एक बात, वो कहते हैं कि जो आप कर्म करते हो ना, उसको आप गुरु की शरण में जा करके ना समझ के करो। यदि केवल आप कर्म करते हैं तो आप कर्म कांड ही रहेंगे, आप उपासना में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल कर्म धर्म से चिन्ह हो, कहते केवल जो कर्म करते हैं ना बिना श्रद्धा विश्वास के, वो कहते भ्रांति है आपकी कि हम बहुत बड़े कर्मकांडी हैं। केवल कर्म धर्म से चिन्ह हो, जो आप केवल कर्म करते हैं वो आपकी भ्रांति है। धर्म करो अनुराग, अथातो धर्म जिज्ञासा। कहते हैं अनुराग से, प्रेम से अंदर का छल कपट जोड़ करके, निर्मल जन मन ऐसा हो करके धर्म करो अनुरागो। यदि धर्म करना है, कर्म करना है, तो अनुराग से, अनुराग यानी प्रेम प्रीति। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया है, प्रेम से उपासना की है, प्रेम से कर्म किया है, वह प्रभु को प्राप्त होता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसा आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई, जिसको प्रभु की कृपा होती है वह गुरु शरण में आकर के, तो गुरु की सन्निधि में सेवा सिमरण के द्वारा निर्मल हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह परम पवित्र जो उपदेश है गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, ऐसा श्लोक और पौड़ी का हमने गुरु महाराज जी की कृपा से चिंतन करने का प्रयत्न किया है। ये वाणी ऐसी आगाध है कि इसका पारावार नहीं है। बहुत अल्प तुच्छ बुद्धि से हमने इसका विचार करने का प्रयत्न किया महापुरुषों के सन्निधि में बैठ करके, फिर भी हम तो कुछ भी नहीं सुनाया ना सुना सकते हैं। जो कुछ सुनाया या बोला है उसमें भी हमारी गलती ही गलती होगी। आप सब और महापुरुष हम सब हम लोगों को एक छोटे से विद्यार्थी समझ करके क्षमा करेंगे और आगे का विचार महाराज जी कृपा करेंगे तो कल को हम करेंगे। आज जहाँ पर समाप्ति है आखिर वाली पंक्ति अंतम वाली पंक्ति पढ़ करके समाप्ति करते हैं।
जैसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जल सोई वाहे गुरु जी का खालसा।